الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. हमारे साथ जो लोग कल प्रोग्राम में शामिल थे, तो एक टास्क मैंने आपको दिया था कि आपने अपना मुहासबा करना है, अपनी वैल्यूएशन करनी है कि मैं आज कहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मुझे अगले रमज़ान तक कौन सी गोल्स हैं जो अचीव करने हैं, रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। मैं कहाँ पे खुद को देखना चाहूँगी 1 साल बाद, और ये बेहतरीन मौका है ऐसी नियतें करने का जो खैर की हैं, जो नेकी की हैं। अक्सर लोग ज़िंदगी में बस यही देखते रहते हैं कि दूसरे लोग कहाँ पहुँच गए, वो कितनी आगे निकल गए, उसने कितनी कामयाबी पा ली, उन्हीं से मुकाबले करते रहते हैं। तो अब करना हमें यह है कि दूसरों को ना देखें, उनको देखना छोड़ दें, अपने आप को देखना शुरू करें। जैसे हम बनने संवरने में किसी और की तरफ तवज्जो नहीं करते, आपने देखा होगा शादियों पे, कोई ऐसे फंक्शंस पे सबको अपनी अपनी पड़ी होती, मैं कैसी लग रही, वो ये परवाह नहीं करते कौन कैसा लग रहा होगा, बार बार शीशे में अपने आप को देखते हैं, खुद बेस्ट लगना चाहते हैं। तो दीन के मामले में ऐसा क्यों नहीं, नेकी के मामले में ऐसा क्यों नहीं, तकवा के मामले में ऐसा क्यों नहीं कि उसमें हम बेस्ट लगना चाहें और हमें अपनी परवाह हो सबसे ज्यादा, किसी और की नहीं हो कि कौन क्या कहाँ पहुंच गया, हम क्या कर रहे हैं। और ये हमारी आउटर ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो हमारी आउटर अपीयरेंस है, जो हमारे दिखना है, हम कैसे लग रहे हैं, जिस पे हमारी सारी तवज्जो होती है, उसकी अल्लाह ताला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, कि आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप कितने स्लिम स्मार्ट हैं, या आपके पास पैसा कितना है, ये अल्लाह ताला नहीं देखता, ये तो उसने खुद ही दिया है, फिर वो क्या देखता है। तो हदीस में आगे है वो तुम्हारे आमाल को और तुम्हारे दिलों को देखता है। और ये जो वक्त है जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं, ये आमाल को संवारने का वक्त है, अपनी क्लींजिंग का वक्त है, अपने दिलों को क्लींज करने का, दिलों की धुलाई का। जैसे फेस की क्लींजिंग होती है, इसी तरह ये है जो हमारे आमाल को क्लींस करने के लिए मौका है। हम अपने आमाल में से जो गंदगी है गुनाहों की, वो निकालने के लिए दुआएं करें और इरादे करें। ये पलीदगी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, नहूसते हैं जो गुनाहों की होती हैं। इंसान मनहूस नहीं होते, गुनाह हैं जो नहुसत लाते हैं। इन गुनाहों को साफ करने का वक्त है, ये मेलों ठेलों का वक्त नहीं है कि हम बैठ के गपशप करें। मस्जिद में भी चले गए तो वहां पे भी गपशप है, सोच रहे हैं हम मस्जिद में बैठे हुए लेकिन सारा वक्त बाहर खड़े हुए हैं, या कुछ खा पी रहे हैं, या कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फेस्टिविटीज़ का टाइम नहीं है, फेस्टिविटीज़ हम बाद में कर सकते हैं, वो ईद का मौका है जिसमें आप ये सब शौक पूरे कर सकते हैं। अभी के लिए नहीं है। खाना पीना बोलना चालना, इससे क्या होगा? जो इस रात की जो असल एसेंस है ना, वो खो जाएगा। इसका जो मजा है ना, देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा कोई स्विच है कि हम जी एकदम ही हम एक दूसरे किसी मोड में चले जाते हैं। ये बड़े हमें अपने गुनाहों के ऊपर पछतावा भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है, दुआएं भी निकल रही हैं, पर स्विच हमने ऑफ कर दिया और फिर हम गपशप करना शुरू हो गए। हम रोबोट्स थोड़ी हैं। उस जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस सिचुएशन में, उस हालत में पहुंचने के लिए पहले से कुछ थोड़ी सी उसकी समझने की तैयारी या वार्म अप होगा, तब आप उस तक पहुंचते हैं। और आप सोचते हैं कि अभी गपशप लगा रहे थे और अभी आप रोना शुरू हो गए कि मेरे गुनाह बहुत हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि आप लोग तन्हा हो, अकेले हो, किसी वक्त तो अकेले होना चाहिए इंसान को, क्योंकि अकेले होके ही वो ज्यादा सोच सकता है, वो थोड़ा अपना मुहासबा कर सकता है, वो अल्लाह ताला से बात कर सकता है। जितना आप सोशलाइज करेंगे, जितना आप खाने पीने में अपना वक्त लगाएंगे, जितना आप हजूम के अंदर होंगे, जाहिर है कोई ना कोई बात तो होगी, इंसान है ना, आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। और इसी वजह से इतकाफ भी है ना कि सिक्लूड हो जाए, आप चले इतकाफ नहीं बैठ सकते, रात को ही अकेले हो जाए, लेकिन किसी वक्त भी ना हो। ये रातें भी हम ऐसे, मस्जिद में होना एक बात है और मस्जिद के अंदर आप क्या कर रहे हैं वो एक बात है। मस्जिद में आपकी क्या एक्टिविटी है, क्या वहां पे इबादत भी हो रही है या कुछ और हो रहा है? तो हमें देखना है कि हम बेस्ट कैसे इबादत कर सकते हैं और कैसे हम अपनी गुनाहों के बोझ उतार सकते हैं, क्योंकि यही टाइम है। आपको फिर से वो हदीस याद करा दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब जिब्राईल अलैहि सलाम ने ये दुआ की थी ना कि हलाक हो गया जिसने रमज़ान को पाया लेकिन अपनी बख्शिश ना करा सका, तो आपने आमीन फरमाई थी। तो अगर हमारी बख्शिश ना हो सकी तो बहुत बहुत सीरियस बात है। और अगर इन रातों से हम महरूम हो गए, रातों से नहीं, लैलतुल कदर से महरूम हो गए, जिसका हमें पता नहीं है कि वो किस में किस रात में है, अगर उससे महरूम हो गए तो क्या होगा? इज इट अ चॉइस कि मैं इबादत करूं नहीं करूं? चलो अगर कर भी ली तो ठीक है, अगर नहीं भी करी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, ये वो हर खैर से महरूम है जो इस रात से महरूम हो गया। हर खैर से कौन होगा जो हर खैर से महरूम रहना चाहेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दी। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस कि हम जागें कि नहीं जागें, या हम इबादत करें कि नहीं करें, या फिर हमारी बख्शिश नहीं भी होती तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस अफेयर कि कोई अगर ये रमज़ान एंड करता है इस तरह से कि उसकी बख्शिश ना हुई हो। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस रात की दुआ बताई है कि लैलतुल कदर में जो दुआ सबसे अहम दुआ है, वो कोई ये दुआ नहीं है कि मुझे फलां चीज़ मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, इतनी चीज़ें मिल जाएं, फलां ऐसा हो जाए, वो ये है कि अल्लाह मेरी बख्शिश हो जाए, वो भी बख्शिश से मुताल्लिक है। तो बख्शिश होना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी अभी नहीं हुई तो फिर कब हो सकती है? इससे ज़्यादा कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है जिसमें इंसान गुनाह बख्शवा सके, जबकि अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज़्यादा है। और हमें ये भी प्रॉब्लम होती है अक्सर कि हमें ये लगता है कि हमने तो कोई ऐसे तो नहीं गुनाह कर दिए कि हमें कोई ऐसी बख्शिश की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, लेकिन इतना भी हमारा बुरा हाल नहीं है। मीन वी आर गुड। ये दिल में कहीं होता है, ठीक है? तो ये हमें समझना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। गुनाह ना बहुत एक संगीन बात है। आपको मैं असलाफ में से एक की बात बताती हूँ, कहमस बिन हसन, उन्होंने फरमाया, मुझसे एक गुनाह हो गया था जिस पर मैं 40 साल तक रोता रहा। 40 साल वो रोते रहे, उस गुनाह की माफी मांगते रहे। वो गुनाह क्या था? ये कहते हैं कि ऐसा हुआ कि मेरा एक भाई मेरी से मुलाकात करने के लिए आया, और उसकी मेहमान नवाजी के लिए मैं मछली खरीद के लाया। खाने से फारिग होने के बाद मैंने उठ के अपने हमसाए की दीवार से मिट्टी का टुकड़ा लिया और उससे अपना हाथ साफ कर लिया। यानी उसके, देखे, उसकी बगैर इजाजत के उसकी चीज हथिया ली। उनको इस चीज ने इतना परेशान किया कि मैंने उसका हक मार लिया है, या उससे बगैर इजाजत के मैंने कमी कर दी उसकी चीज में। अरे वो कितने सेंसिटिव थे गुनाहों के बारे में, किसी भी गलती के बारे में। वो ऐसे नहीं समझते थे कि फिर क्या हो गया, ये कौन सा कोई ऐसा गुनाह है। हमें रोना इसलिए नहीं आता कि हम अपने आप को ना बिल्कुल साफ समझते हैं। हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जो भी हम कर रहे होते हैं। हम इतना ज्यादा इसको मसला नहीं समझते कि जो वो हम कर रहे हैं वो सारा कुछ ठीक ही है ना। ये मिसाल बताती है कि उनको जरा जरा सी गलतियों पे एहसास होता था। हमें तो जैसे अभी बात हुई कि अपने कपड़ों पे या अपने चेहरे पे कोई दाग लग जाए, कुछ लोग तो बच्चियां कहती हैं कि पिंपल निकल गया है तो अब हम कैसे किसी पार्टी पे जाएंगे। इतने कॉन्शियस होते हैं अपने जाहिर के बारे में, लेकिन अंदर गुनाहों से दिल कितने स्याह हुए में, इसका कोई ना एहसास है ना कोई फिक्र है। फुकाहा कहते हैं कि जब गुनाहगार किसी गुनाह को बड़ा समझता है और उससे डरता है तो अल्लाह ताला के हाँ वो गुनाह छोटा हो जाता है, और जब कोई किसी गुनाह को छोटा समझता है और उसको करता रहता है तो अल्लाह ताला के नजदीक वो बड़ा हो जाता है। यानी जब इंसान ढीठ होके गुनाह करता रहे और उसको कोई एहसास नहीं हो रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं, इट्स ओके okay। जब वो ये कहने लगता है ना और कॉन्स्टेंटली उस गुनाह में पड़ा रहता है, तो वो चाहे वो सगीरा गुनाह हो वो भी कबीरा बन जाता है। जैसे कि लकड़ियां हो, छोटी छोटी लकड़ियां भी हो, जब उनको भी जमा कर लिया जाए तो क्या होता है, एक ढेर बन जाता है। तो जरूरी है कि कोई भी गुनाह हो उसके ऊपर नदामत हो, उसका एहसास हो कि ये गलत है और मैं गलत कर रही हूं और ये मैंने छोड़ना है। गलती से दोबारा हो जाए वो अलग बात है, मगर फिलफौर उसको फिकर उसकी रहना कि मुझे इसको छोड़ के इसमें से निकलना है। वो पता है आदम अलैहिस्सलाम, उनकी जो तौबा थी वो किस वजह से कबूल हुई? एक तो उन्होंने इकरार किया इसका, और फिर वो इतना पछता रहे थे, नंबर टू। नंबर थ्री, उन्होंने अपने आप को मलामत किया, अल्लाह मैंने अपने आप पे जुल्म किया। उसने ये नहीं कहा या अल्लाह तूने मुझे ये करा दिया। चौथी बात ये कि उन्होंने देर नहीं की थी, फौरन माफी मांगी थी। तो मोमिन जो होता है वो देर नहीं करता, वो टालता नहीं है, वो ये नहीं कहता अच्छा कर लेंगे कर लेंगे, अगर पता चल ही गया कि मैं गलत कर रही हूं तो उसको टालेगा नहीं। देखिए हदीस में आता है कि मोमिन अपने गुनाहों को ऐसे समझता है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा हुआ और पहाड़ उसके ऊपर गिरने वाला है, ऐसे समझता है। और मुनाफिक वो है कि उसके लिए गुनाह कोई मसला ही नहीं। वो अपने गुनाह को ऐसे समझता है जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी, उड़ा दी बस। तो ये डिफरेंस है, हमें हमारे गुनाह कैसे लगते हैं, बड़े हल्के से लगते हैं या इतने भारी लगते हैं कि हमारे दिल पे बोझ हो रहा है। देखें, इंसान के लिए नेकी करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना गुनाहों को छोड़ना, उन पे पछताना, उनसे निकलना मुश्किल होता है। हमें कह दिया जाए ना हम 20 रकात पढ़ लें तो वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमें कोई एक गुनाह भी जो हमारी आदत बन चुका है उसको छोड़ने का कह देना तो वो कहेंगे बड़ा मुश्किल है। अव्वल तो अल्लाह ताला किसी को उसकी गुनाह दिखा दे तो ये भी बड़ी मेहरबानी, ये भी उसका बहुत बड़ा करम होता है, वरना अक्सर तो गुनाहों का एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और अगर कहीं पता चल भी जाए तो मानते नहीं हैं और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं और उसको जस्टिफाई करके ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये कोई गलत है ही नहीं और जैसे हमारा हक ही है, हमें ऐसे ही करना चाहिए था, और फिर क्या करें। तो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं ना, वो गुनाहों के एहसास में बहुत सेंसिटिव होते हैं, दूसरे वो कभी गुनाहों को मामूली नहीं समझते, तीसरे वो हर वक्त इस्तगफार करते रहते हैं। तो गुनाहों से बचना भी है, उनको मामूली नहीं समझना। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, आयशा छोटे गुनाहों से भी बचो, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ उनका भी सवाल होगा। तो इनको मामूली ना जाने। आपको पता है कुरान करीम में सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने नेक लोगों के बारे में बताया कि वो नेकी करके भी डरते थे। वल्लदीना युतून मा अताउ व कुलूबुहुम वजिला, वो लोग जो देते हैं जो वो देते हैं इस हाल में कि उनके दिल फिर भी कांप रहे होते हैं। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, क्या ये वो लोग हैं जो गुनाह करके फिर अल्लाह ताला से डर रहे हैं कि अब उनसे गुनाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इससे मुराद वो लोग हैं जो नेकी करने वाले हैं फिर भी डरते हैं। या अल्लाह, हम तो गुनाह करके भी नहीं डरते, वो नेकी करके भी डरते हैं। क्यों? नेकी करके कौन डरता है? नेकी करते तो हम बड़ा फूलते हैं, बड़े बड़ा अकड़ जाते हैं कि हमारे, देखो हमने कितनी नेकियां की हैं। लेकिन गुनाह तो छोड़े, वो नेकी करके भी डर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप, क्या वजह होगी? नंबर 1 ये कि उनको ये डर रहता है पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हाँ हमने किया तो कैसे नहीं कबूल होगी। जैसे एक दफा की बात है कि मैंने उम्रा था तो मैंने कहा अल्लाह ताला बस कबूल करे हमसे, तो किसी ने आगे से कहा लो अब अल्लाह ताला ने कबूल किया पहले और आपको बुलाया बाद में, कबूल ही कबूल है आपका। वो भाई हम कैसे कह सकते हैं कैसे, ये सोचने में तो बड़ा अच्छा ख्याल लगता है और मेरा भी दिल करता है कि हाँ मैं ऐसा ही बिलीव कर लूं, लेकिन जब हम देखते हैं ना नेक लोगों को तो वो नहीं ऐसे कहते थे कि कबूल होगा ही तो अल्लाह ताला ने हज पे बुलाया ना, वो जी कबूल ही कबूल है जी, वो डरते रहते थे। ये आयत मैंने आपके सामने रखी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से खुद फरमाया कि ये नेक लोग हैं जो नेकी करके भी डरते हैं, वो समझ रही थी शायद बुरे लोग हैं जो गुनाह करके फिर डर रहे होते, नहीं, नेक काम करके भी डरने वाले ये सिर्फ अल्लाह ताला के प्यारे लोगों का ही काम है। इब्राहिम अलैहि सलाम को देखें, काबा बना के भी दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह तू कबूल कर लेना, रब्बना तकब्बल मिन्ना। सोचिए ना आप, उन्होंने कोई गलत तो नहीं काम किया, और कितना उनकी नियत से ज्यादा खालिस किसकी नियत हो सकती है, उनके काम से ज्यादा बेहतरीन काम किसका हो सकता है। अल्लाह ताला के पैगंबर हैं,
हमें तो अपनी खैर नियतों का भी हर वक्त यही डर लगा रहता है कि या अल्लाह इसके अंदर कोई रियाकारी ना आ गई हो, या अल्लाह इसके अंदर कोई तकब्बुर की बात ना हो, या अल्लाह तो बस संभल जाए हमारी नेकी, पता नहीं कितनी इसमें कमियां हैं। नहीं, उनके काम में तो कोई कमी नहीं थी। हम एक मस्जिद में डोनेशन दे के ही बहुत कुछ समझते हैं, उन्होंने तो खुद बिल्ड किया अल्लाह का वो घर, अकेले ने अपने बेटे के साथ मिलके, लेकिन फिर भी कोई बड़ाई नहीं, कोई ये नहीं कि हमने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। आज हम ना छोटे ही छोटे काम करके ना इतना बड़ा अपने आप को समझ लेते हैं, तो ये एहसास निकाल दें, ऑलवेज नेकी करके भी ना आजिज रहें, इसको पंप एंड शो ना बनाए, ये कितना बड़ा एक यानी ऐसा बना लिया कि जैसे हमने क्या कारनामे, हम बस क्या चीजें बन गए, चाहे मुंह से आप नहीं भी बोलते हो, एक्शंस एक्शंस बताते हैं कि हम प्राउड ही बहुत हैं जी, हमने ये काम कर लिया। वो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कलीमुल्ला डर रहे हैं, खलीलुल्ला डर रहे हैं, तो फिर बाकी किसी के लिए क्या रह जाता है? हमें भी जरूरत है कि हम दुआएं करें, या अल्लाह तू हमसे कबूल कर लेना जो हमने सदका किया, जो हमने, देखिए हमारे तो सदके चाहे हैं चाहे नमाजें हैं, पता नहीं वो तो क्या अल्लाह ताला माफ करे, तो डर लगता है कि मुंह पे ना मार दी गई हो कि कितने ख्यालात और कितनी दिमाग कहीं और ही पहुंचा होता है। और अगर इन रातों में भी कहीं जाग गए तो आधे सोए हुए हैं आधे जागे हुए हैं, दिमाग चल नहीं रहा, पता नहीं कैसी कैसी इबादत हो रही है, क्या कह रहे हैं कुछ पता नहीं है, नीयतें भी फिसल फिसल जाते हैं हम उसमें भी, तो हमें तो बहुत ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। कहा जाता है कि नेक लोगों, जो परहेजगार लोग नेक अपने आप को कहते हैं ना, उनको क्या चीज हलाक करती है, कि उनको जो चीज हलाक करती है वो है इतात का धोखा, कि हम तो बड़े इतात गुजार हैं जी। और जो आम लोग होते हैं, एक तो है ना दीनदारों की बात हो रही, ठीक है, एक जो आम लोग होते हैं उनको क्या चीज हलाक करती है, उनको हलाक करती है कि वो गुनाहों को मामूली समझते हैं, ये क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो वाकई अल्लाह ताला को पहचानता है ना, जो वाकई नेक और मुत्तकी बंदा होता है ना, वो ना तो इतात पे इतराता है और ना ही गुनाहों को मामूली चीज समझता है। अल्लाह अकबर। आम इंसान जो है वो तो नेकी परहेजगारी और इसके ऊपर फखर करता है और गुनाह को कुछ समझता नहीं है, उसके ऊपर शर्मिंदगी नहीं उसको महसूस होती। लेकिन जो नेक लोग होते हैं ना, उनका ये हाल होता है कि वो जानते किस चीज के ऊपर रोते हैं, गुनाह पे तो रोते ही हैं, उनसे नेकी का कोई मौका हाथ से निकल जाए उस पे भी रोते हैं, हाय ये मौका मेरे हाथ से चला गया। तो लिहाजा हमें इन रातों में कबूलियत की भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला कबूल कर लेना, और इसकी फिक्र करनी है कि कबूल हो जाए। क्योंकि आप देखिए अगर किसी अमल के अंदर रियाकारी आ गई तो वो कबूल नहीं होगा, अगर एहसान जता दिया तो उसके बाद जाया हो जाएगा। कहीं भी दिल में ये चाहत छुपी हो कि पता नहीं हमने क्या बड़ा किसी के ऊपर एहसान कर दिया और देखो मैं ना इसकी मदद करती तो फिर था, तो ये सारी चीजें इंसान के अमल को जाया कर देती हैं। नेक लोगों को फिर ये भी डर रहता है कि जिंदगी में कहीं कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए जिससे हमारी नेकी जाया हो जाए, क्योंकि बाज ऐसे गुनाह भी होते हैं नेकियों को चाट लेते हैं दीमक की तरह। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मन जाअ बिल हसनाति फलहु आशरु अमसालिहा, जो लेकर आया नेकी उसके लिए 10 गुना अजर है। लेकर आया। क्या मतलब? इसका मतलब है कि लाना जरूरी है, ये नहीं कि दुनिया में ही छोड़ आया है। लेकिन जो नेकियां जिसमें कोई भी बीमारी लग जाए, दीमक लग जाए, वो तो वहां पे पहुंचेंगी ही नहीं। असल बात यह है कि हमने सिर्फ नेकी करनी नहीं है, हिफाजत से वहां पहुंचानी भी है। जैसे आप कोई चीजें यहां से खरीद लेते हैं, फिर आपने अपने घर के लिए उनको शिप भी तो कराना होता है, या उनको बुक कराना होता है। अब आपको ये फिक्र रहती कि चीज वहां सलामती के साथ पहुंच भी जाए, ये ना हो कि रास्ते में ही सामान गुम हो जाए, ये ना हो कि इधर उधर हो जाए, कोई चीज टूट जाए। तो नेकी भी करना एक बात है और उसको संभालना दूसरी बात है। इसी वजह से वो डरते थे करके भी, कि उनको ये था कि पता नहीं रह जाए, बच जाए वहां तक के लिए। तो ये बातें हैं जो फिक्र की होनी चाहिए। नेकी की हिफाजत करनी है सोने चांदी की हिफाजत से भी ज्यादा, क्योंकि सोना तो यहां चोरी हो गया तो माल का नुकसान होगा ना, मगर नेकी अगर चली गई तो हमेशा की जिंदगी का नुकसान होगा। जो मुखलिस सहाबा कराम थे, उनको तो हमेशा इस चीज का डर रहता था कि हाय कहीं मेरे अंदर निफाक ना आ गया हो, मुनाफिक ना हो गया हो, अपने ऊपर इस चीज का डर रखते थे। हालांकि वो सच्चे होते थे, मुनाफिक नहीं डरते थे, नेक लोग जो सहाबा थे ना वो डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, हज़रत हंजला के बारे में जैसे आता है। हम तो 29-30 दिन की थोड़ी सी छोटी सी मेहनत पे भी समझते काफी है, इसीलिए हम ईद के ऊपर बिल्कुल ऑल आउट हो जाते हैं, क्योंकि अब हमने काफी जो कर लिया होता है। खत्मे कुरान होता है तो उसके बाद मस्जिदें भी खाली होने शुरू हो जाती हैं, जैसे रमजान ही खत्म हो गया। तो कुछ भी नहीं किया हुआ, कहते हैं एक रिवायात में आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम साहिले समुंदर की तरफ निकल गए और 1 साल इबादत में मसरूफ रहे। साल खत्म हुआ तो अर्ज करने लगे, या अल्लाह मेरी कमर झुक गई है, मेरी आंखें थक गई हैं और आंसू खुश्क हो गए, और कुछ पता नहीं मेरा अंजाम क्या हो। अल्लाह ताला ने एक मेंढक को इसका जवाब देने के लिए मामूर कर दिया। वो कहने लगा है अल्लाह के नबी, आप 1 साल बाद ही ये कहने लगे, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाया, मैं 30 बरस से अल्लाह ताला की हमदो सना में मशगूल हूँ, फिर भी मैं उसके खौफ से कांपता हूँ। आप देखें हर चीज़, अगर हम इसको इसराइली रिवायात हैं, अगर इसको वैसे ना भी देखें तो आप देखें हर चीज़ अल्लाह ताला की हमदो सना कर रही है और फिर भी डरती है, चाहे वो सूरज है, चाहे चांद है, चाहे फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के खौफ से कांपते हैं जब से वो बने हैं। तो हमारे थोड़ा सा काम करने पे इतना ज्यादा अपने आप को समझ लेना, ये अकलमंदी नहीं है। जिसको ये पता ही नहीं मेरी नेकी कबूल हुई भी है या नहीं, जिसको ये नहीं पता कि कल कयामत के दिन मेरे साथ क्या होना है, जिसको ये नहीं मालूम कि मेरी नेकियां कयामत के दिन बढ़ेंगी या घट जाएंगी, जो ये नहीं जानता कि अल्लाह ताला उससे राजी भी है या नहीं, फिर वो बेखौफ कैसे हो सकता है, वो मुतमईन कैसे हो सकता है, वो नारे कैसे लगा सकता है। बड़ा कारनामे करती है इब्राहिम तैमी, फरमाते हैं कि जो बंदा हर वक्त बेखौफ रहता है ना और मुतमईन रहता है, कभी गम नहीं करता, कभी खौफ नहीं उसको महसूस होता, तो खतरा है कि वो जन्नत वालों में से नहीं होगा। क्यों? अब ये गम और खौफ वो वाले नहीं है जो हम वैसे अपने चीजों के ऊपर गम करते हैं कि हाँ ये चीज मुझे नहीं मिली, लाने के पास ये आ गया, वो वाला गम नहीं है, ये गम है अपनी आखरत के लिए। तो जो उससे बेखौफ हुआ है ना, वो कहते हैं कि खतरा है कि वो जन्नत वालों में से नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत वालों के बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वो जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो जानते हैं वो क्या कहेंगे, इन्ना कुन्ना कबलु फी अहलीना मुशफिकीन, हम तो इससे पहले अपने घर वालों में बहुत डरा करते थे। यानी वो याद करेंगे, कहेंगे हम जब दुनिया में होते थे ना, हम बहुत डरते थे। तब अब वो जन्नत में बैठे हुए, तो जो नहीं डरता तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है वो जन्नत वालों में से ना हो। और याद रखें, जो आंख अल्लाह ताला की सजाओं के, उसके अजाबों के डर से रो पड़े, वो बड़ी कीमती आंख है, बड़ी कदर वाली आंख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आंख आंसुओं से भर जाए, अल्लाह ताला उसका जलाना आग पे हराम कर देता है। इसी वजह से हर नेकी का सवाब मुकर्रर है, लेकिन आंसुओं का सवाब ये तो फरिश्ते भी नहीं जानते कि कितना है। ऐसा आंसू जो निदामत से बहाओ, जिसमें शर्मिंदगी हो, जिसमें अफसोस हो, जिसमें पछतावा हो कि क्यों मैं, मेरे से गुनाह हो गए, क्यों मैंने अपने रब्बे करीम की नाफरमानी कर दी, कैसे मैं ये कर सकता था, ये नहीं होना चाहिए था, जिसमें इंसान खुद को मलामत करे और ये भी डरे कि अब मेरा क्या बनेगा। फिर जब उसकी आंख से आंसू बहे, तो ये वाला वो आंसू है कि जिसके लिए फिर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है, वो आग में नहीं जाएगा। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरते रहो, जिसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकल आया, आग उसको कभी नहीं छुएगी। यानी इतना सा कतरा, इतना सा कि मक्खी का सर कितना छोटा होता है, मक्खी इतनी छोटी है तो उसका सर कितना छोटा है, शायद उसके सर जितना आंसू अगर आ जाए तो वो शायद आंख से बहे भी ना। लेकिन अगर इतना भी आ गया तो आग से आजादी मिल सकती है। तो ये रातें अपनी जिंदगी की कोताहियों पे नजर करने की हैं, कमियों पे, और आंसू बहाने की हैं। निजात के बारे में जब पूछा गया, निजात किस में है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीन बातें बताई थी उनमें एक यही थी, अपने गुनाहों पे रो। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जो इंसान गुनाह को याद करके रोता है, उसके गुनाह ऐसे मिट जाते हैं जैसे हवा के झोंके से खुश्क पत्ते गिरते हैं। अब जिस वक्त आप बैठें और अल्लाह ताला से बात करें, तो अपनी जिंदगियों को पीछे झांकें उसके अंदर और सोचें, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से बात करें और माफी मांगें। और ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल होता है कि आंख आंसू बहाए, वरना जो आंख खुश्क हो जाती है ये तो बड़ी बदबख्ती की अलामत है, इसका मतलब दिल सख्त हो गया। इमाम इब्नुल कय्यिम फरमाते हैं, ए इंसान, अल्लाह ताला ने 7 समंदर पैदा किए, मैंने इतना पानी पैदा किया, मगर मोहब्बत तेरे एक आंसू से की है और तू वो भी ना बहा सका, जबकि अल्लाह ताला को 2 कतरे सबसे बढ़कर महबूब है। एक अल्लाह ताला के रास्ते में खून का कतरा जो बह जाए, और दूसरा आंसू का कतरा जो उसके खौफ से बहे। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मैं डरता हूं अगर अल्लाह ताला ने मेरे किसी गुनाह की वजह पे, किसी गुनाह के ऊपर फरमा दिया जहां मैंने तुझे नहीं बख्शा, तो मैं क्या करूंगा? अल्लाह अकबर। वो इस चीज को सोचते थे कि अगर कयामत के दिन अल्लाह ताला ये फरमा देता है मैंने तेरी बख्शिश नहीं करी, तो क्या होगा मेरा वहां? अब वापसी भी नहीं रहेगी कि दुनिया में आके कुछ और कर जाए। तौबा का भी दरवाजा बंद हो चुका, क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है जब इंसान की आखिरी सांस होती है। कैसे बख्शिश हो ऐसे इंसान की? फिर उसका क्या बनेगा? अल्लाह ताला का फैसला है, वो जिसको चाहे बख्शे, जिसको चाहे ना बख्शे। इसीलिए इब्ने जौजी फरमाते ना, सबसे बेवकूफ वो है जो गुनाह करने के बावजूद बेफिक्र रहता है, उसको कोई फिक्र नहीं। कहता ठीक है, कोई बात नहीं, बख्शिश तो हो ही जानी है। डराओ ना हमें, हम डरना नहीं चाहते। असल में ये दिल की सख्ती होती है। और पता है क्या, कौन सी चीजें दिल को सख्त करती हैं? कसरत कलाम और कसरत ताम, बहुत खाना और बहुत बातें, ये दिल को सख्त कर देती हैं। तो खामोश रहना सीखेंगे फिर ही कहीं गौर व फिक्र होगा। अब तो ये है कि अगर बात करने वाला कोई वैसे ना मिले तो फिर हम टेक्सटिंग से बातें शुरू कर देते हैं, बल्कि उस पर ज्यादा बातें करते हैं। तो ये डरते नहीं है, मेरा दिल सख्त हो गया तो क्या होगा? अब निजात सिर्फ किस चीज के अंदर है? तौबा में, इस्तिग़फ़ार में। और सुफियान सौरी फरमाते हैं, हैरत है उस डूबने वाले पे जिसके पास निजात का सामान भी हो फिर भी वो डूब जाए। पूछा गया वो सामान क्या है, फरमाया इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार करें, फूले नहीं अपने किसी भी काम के ऊपर, अल्लाह ताला के आगे झुक जाए। देखें हम किसी भी खानदान से हो, हम कितने ही मालदार क्यों ना हो, हमारा नसब कितना ही आला क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें किसी को उसके नसब या खानदान की वजह से तारीफ उसकी की गई हो कि उसका खानदान बड़ा ऊंचा है। नहीं, ये चीजें छोड़ दें। माल के भी धोखे में ना रहें कि मालदार हम बहुत हैं तो इसलिए वहां पे भी जाके पता नहीं हमारे यही सारी चीजें हमें वहां पे भी मिल जानी है, ये धोखा है। खुद को कंगाल समझे। ऐसे एक बड़ी प्यारी बात आती है कि हज पे कोई लोग जब गए हुए थे तो एक हाजी ने कहा, जब लोगों को देखा कि वो अल्लाह ताला के आगे इतनी गिरिया उजारी कर रहे हैं, रो रहे हैं अल्लाह ताला के आगे, तो उसने कहा कि अगर मैं इनमें ना होता तो शायद इनकी बख्शिश हो जाती। तो इमाम ज़ुहरी इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि ऐसा एक बंदे को होना चाहिए कि वो अपने आप को इस तरह हकीर समझे। ये तो हमारे दिमाग भी ऐसे ख़राब हो जाते हैं ना, क्योंकि जब हमें ये बताया जाता है कि भाई कोई बात नहीं, आप लोग बड़े अच्छे, आपने जितना कर लिया ना वही बहुत है, बहुत आप अच्छे हो गए, तो हमने क्या फिर समझना है? अब कोई इसी के ऊपर छोटी छोटी चीजों पे कह दे कि आपकी तो बात ही क्या है जी, तो इन चीजों से धोखा ना खाया करें। मैं आपको मायूस नहीं कर रही, लेकिन रियलिस्टिक हूं। हमारे जो अमल है ना, कोई ऐसे बड़े खास नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाए कि वो इनको ही कबूल कर ले तो हम शुक्र करें इस बात का, वरना मुझे और आपको, हमारे दिलों के अंदर हमें पता है हमारे हालात क्या हैं। बल इंसान वाला नफसी ही बसीरा वलो अल्का माअज़ीरा। अल्लाह ताला ने सूरह क़यामा में फरमाया ना, इंसान को बड़ी अच्छी तरह पता है वो क्या है, चाहे वो कितनी ही माजरतें देता रहे, एक्सक्यूजेस करता रहे। अब कोई इमाम साहब हमें बता रहे हैं जी आप बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोगों ने बस शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा आप लोगों ने कर लिया, और हम फूल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अंदर हमें पता है ना कि हम क्या हैं और हमने कैसी नमाजें पढ़ी, या हमने कैसे रोजे रखे हैं, या क्या हमने कुरान पढ़ लिया, सब पता है हमें। तो हमने इस तरह से नहीं देखना कि कोई तारीफें कर रहा है तो हम भी उसमें बात में आ जाए, हमने अपने असलाफ को देखना है कि वो क्या करते थे, क्या वो भी इसी तरह प्राउड होके घूमते थे, वाह 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 क्या बात है हमारी। बस वो अल्लाह ताला की बख्शिश के उम्मीदवार होते थे, उसकी रहमत की तरफ देखते थे और बड़ी आजजी के साथ रहते थे, नहीं समझते थे कि हमारे अमल किसी काबिल हैं, मगर वो कहते थे कि अल्लाह तेरी रहमत ही अगर हो जाए तो वो सही डायरेक्शन है, उनसे सीखेंगे कैसे होना है, लोगों की बातों से नहीं। और चूंकि मैं देखती रहती हूँ कि इस तरह से बाज़ दफ़ा कई लोगों को बहुत ज़्यादा हाइप अप कर देते हैं, कि बस लोगों को लगता है कि ये आज के वक्त में हमने यही कर लिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, देखो हमने अपनी जॉब्स के साथ कर लिया, कोई कह रहा मैंने घर के साथ, मेरी तो इतनी मसरूफियत थी, मैंने फिर भी देखो जी ये कर लिया। तो हम आज शायद दौरे फितन है इसमें रह रहे हैं, तो हम आज छोटी चीजों को भी इतना बड़ा समझने लगे हैं, जबकि अल्लाह अकबर हमारे असलाफ उनकी नेकियों के हालात आप पढ़ने लगते हैं तो पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं खड़े हुए। इसलिए अल्लाह ताला से ये मांगे कि अल्लाह ताला कमियां रही हैं, इससे ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, तो इसके ऊपर भी माफ कर दे कि उतना नहीं कर सके, और जो किया भी है उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां, उसको भी माफ करके उसको कबूल कर, तो मिन्नतें करें कि अल्लाह ताला का तू कबूल कर ले, ये मिन्नत समाजत करें, ना कि ऐसे समझें कि हमने कर लिया तो कबूल ही कबूल है जी, हमारा नहीं कबूल होगा तो और किसका होगा। तो अपनी अप्रोच सही करें, और आज ही अल्लाह ताला को पसंद है, ये बड़ाइयां नहीं पसंद उसको, और हम बड़ाई के लायक नहीं हैं, हम तो छोटे छोटे लोग हैं मामूली से, तो छोटे रहेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला हम पे तरस खा ले, हम पे रहम करते हैं, क्योंकि जो कमजोर होता है उस पे ही कोई तरस खाता है ना, तो अपनी कमजोरी का इजहार करें, अपनी बेबसी का इजहार करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सज्दे में जाके थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहें, चाहे आप कुछ भी नहीं बोल रहे, बस बस वहीं रहें, अपना माथा वहीं रखें, आपका दिल बोले कि अल्लाह मैं निकम्मा, मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी तूने मेरे ऊपर इतना करम फरमाया, ना मेरे अमल किसी काबिल हैं, ना मेरे पास कोई ऐसे खास नेकियां हैं दिखाने के लिए, फिर भी तू अपना करम मुझ पे करता रहता है, जबकि मैं नाफरमान, मैं गुनाहों में लथपथ, तब भी तू अपनी मेहरबानियां मुझ पे जारी रखे हुए है, और तू कितना अजीम रब है, और तू ही मेरा रब है। कुछ देर के लिए इस तरह अपने अल्लाह से बातें कीजिए, तो हम ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहती हूँ, इसको प्रैक्टिकली करके देखें आप, क्या ये सिर्फ बातें ऐसे सुनने की नहीं है कि टाइम पास हो गया, कि ये अभी नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे। हसन बसरी फरमाते थे ना, दुनिया के कल कुल 3 दिन हैं, जो कल गुजर चुका है वो तो खत्म हो गया, जो आने वाला है उसका पता नहीं, जो आज है ना आज इसी में कर लो जो करना है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम बेहतर से बेहतर होते जाएं, हर दिन, हर गुजरने वाला दिन हमारी जिंदगी में बेहतरी लेकर आए। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम अपने।